para Radio Exclusive Interviews.
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
नमस्कार श्रोता साथियों और सभी बच्चों को मेरा हेलो। अर्पा रेडियो से मैं हूँ अलंकृता और आज हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और मेरे साथ हैं हर्षिता नोपानी जो कि सेंट जेवियर्स में पढ़ने वाली स्टूडेंट हैं और फिलहाल ये कक्षा 8वीं में है और हाल ही में इन्होंने इंडिया में साइंस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए आइडिया कहाँ से मिला और कैसे इन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्ट लिया और कैसे ये पहुंची हैं फर्स्ट पोजीशन पर। हेलो हर्षिता।
हेलो।
तुमने अभी इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है।
हाँ।
तो ये कंपटीशन के बारे में तुम्हें पता कहाँ से चला?
ये एक्चुअली ना स्कूल से पता चला था कि जो पीडीलाइट कंपनी है उन्होंने इंडिया के सभी स्कूल्स में ये नोटिस भेजा था कि वो एक कंपटीशन कर रहे हैं, तो जिस बच्चे को भी पार्ट लेना है वो ले सकता। उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए थे तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने बताया था कि ये टॉपिक्स है, जिस भी बच्चे को पार्ट लेना है वो मॉडल बना सकता है।
तो ये प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था?
प्रोजेक्ट के कई टॉपिक थे, एक ओशन लाइफ, एक फॉरेस्ट लाइफ और बहुत सारे।
तो ये जो कंपटीशन था ये कुछ ऐसे सीनियर बच्चों के लिए या जूनियर बच्चों के लिए स्पेसिफिकली था, ये सारी कैटेगरीज के लिए था?
ये एज 8 से 14।
तुम्हारे किस टीचर से तुम्हें पता चला इस कंपटीशन के बारे में?
साइंस टीचर नवनीता मैम।
तो ये सुनते ही तुम्हारे मन में ख्याल आया कि मैं पार्ट लूं, मतलब एकदम से मन हो गया पार्ट लेने का या तुमने सोचा कुछ?
नहीं नहीं, तुरंत मतलब मैम जैसे क्लास में बोली किस किस बच्चों को पार्ट लेना है तो मतलब तुरंत मैंने बोल दिया कि मैं बनाऊंगी।
फिर ये प्रोजेक्ट सबमिट करने का प्रोसेस क्या था?
जो मॉडल हमने बनाया था उसको स्कूल के जो टीचर्स थे जिन्होंने ये बताया था उन्होंने पिक्चर लेके पूरा उनको भेज दिया, पीडीलाइट कंपनी वालों को भेज दिया। उसके बाद मतलब कुछ 1,30,000 एंट्रीज थी तो उसमें 16 बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब उन्होंने पूरा सिलेक्ट किया और हर स्कूल में जिस बच्चे सिलेक्ट हुए जिस भी स्कूल के और पेरेंट्स के पास फोन आया कि आपके स्कूल की बच्ची और आपके घर की बच्ची इस मॉडल में सिलेक्ट हुई है और फाइनल के लिए आपको बॉम्बे आना पड़ेगा।
ओके, मतलब एक काफी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे।
हाँ।
ओके, तो क्या ये जूनियर्स में भी 16 और सीनियर्स में भी 16 ऐसा था?
नहीं नहीं, टोटल 16, उसमें से 8 जूनियर्स 8 सीनियर्स।
ओके, फिर बॉम्बे जाने के लिए कॉल आया, फिर
उन्होंने बोला कि 3 टिकट्स वो प्रोवाइड करेगी, एक स्कूल के टीचर की, एक बच्चे की और कोई भी एक पेरेंट्स की। तो उन्होंने फ्लाइट की टिकट प्रोवाइड की थी और वहाँ रहना खाना टोटल मतलब उन्हीं का था, मतलब स्टार होटल और फ्लाइट सब कुछ उन्होंने ही देखा था।
अच्छा, ये हम जाने की बात पर तो आएंगे पर इससे पहले ये बताओ कि जब फर्स्ट प्रोजेक्ट तुमने बनाया तो क्या ये सोच रखा था तुमने कि हाँ ये तो मेरा सिलेक्ट होगा ही, या मन में था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा?
नहीं, मन में ऐसा था कि मॉडल तो अच्छा बना है, सिलेक्ट हो सकता है, विश थी कि सिलेक्ट हो जाए।
अच्छा, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में बनाया क्या था?
फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैंने ओशन लाइफ टॉपिक सिलेक्ट किया था तो उसमें मतलब ओशन का जो लाइफ था अंदर का वो दिखाना था कि ओशन में मछलियाँ कैसे रहती है।
तो हम तो एक ऐसी जगह पे रहते हैं कि हम ये मरीन लाइफ से और ओशन से काफी दूर रहते हैं।
हाँ।
मिडिल इंडिया में हमारा घर है तो हम आसपास ज्यादा जंगल और पेड़ पौधे देखते हैं, तो ये फिर ओशन पे प्रोजेक्ट बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया?
टीचर्स थे, भाई था जिन्होंने बोला कि थोड़ा ओशन पे बनाते हैं क्योंकि थोड़ा ओशन ऊपर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि उधर भी मछलियाँ रहती है, पौधे थोड़े से उधर भी है, कोरल्स, तो उसको भी थोड़ा सेफ करके रखा जाए।
तो प्रोजेक्ट में तुमने दिखाया क्या था?
प्रोजेक्ट में बेसिकली ओशन के अंदर का जीवन दिखाया था, जैसे ओशन के अंदर बहुत सारे पहाड़ रहते हैं, बहुत डेप्थ में खाई वाई भी रहती है, तो वही मछलियों का घर, पूरे पेड़ पौधे, कैसे मछलियाँ तैरती है, रहती है, खाती है और मतलब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पूरा उस टाइप से मॉडल सजेक्ट, कोरल्स जो समुद्र के पौधे होते हैं वो सब।
तो हर्षिता, किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने बनाया?
मतलब मैंने एक हार्ड मटेरियल का बेस लिया था, एल शेप बेस, जिसमें लाइक ओशन का कलर था और मैंने मतलब बहुत सारे ओशन एलिमेंट्स बनाए थे लाइक कोरल्स, फिशेस, वो सब मैंने एक क्ले के मदद से बनाया था, एयर ड्राई क्ले। कोरल्स को मैंने ओशन के जमीन में उसमें पूरा स्टिक किया था और मैंने जो शी फिशेस होते हैं उनको बारबेक्यू स्टिक और रोप के मदद से हैंग किया था कि देखने में ऐसा लगे कि वो समुद्र में तैर रही है और वेल फिशेस सब कुछ ऐसे उनको हैंग कर दिया था कि देखने में ऐसा लगे कि वो तैर रही है। कोरल्स जो लहराते रहते हैं समुद्र में उनको भी मैंने नीचे स्टिक किया था पूरा, और फिशेस का घर बनाया था क्ले से जिसमें वो रहती है, स्टोन्स सीसल सब बना के उनकी उनकी जगह में स्टिक करके और हैंग कर दिया था।
पूरी मरीन लाइफ की एक झलक आपने उस मॉडल में उतार दी थी,
हाँ
मैं ऐसा समझ पा रही हूँ।
हाँ
ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका सफल हुआ और आप कहीं ना कहीं जो आपकी प्रेयर्स थी और जो आप चाह रही थी आपकी विश रंग लाई। उसके बाद जब तुम जा रही थी और जब तुम्हें कॉल आया कि अब तो प्रोजेक्ट हो गया है सेलेक्ट और मैं अब मुंबई जाने वाली हूँ, तो कैसा फील हुआ उस?
तब बहुत एक एक्साइटमेंट जैसा फील हुआ था कि मुंबई जाएंगे, वहाँ पे लाइक पूरा शूट होते हुए स्टूडियो था ना फिल्म सिटी वो देखेंगे, और मतलब वहाँ पे मॉडल वॉडल बनाएंगे थोड़ा। वहाँ
कितने दिन के लिए आप लोगों को जाना पड़ा?
पे 3 दिन के लिए बेसिकली जाना था, एक 30 की फ्लाइट थी, 30 मार्च की जाने की, और फिर 31 को प्रोग्राम था और देन 1 अप्रैल वापस।
तो पेरेंट्स में से किसी एक को ही लेके जाना था, तो आपके साथ कौन गए हुए थे?
किसी एक को ही ले जाना था पर मेरे साथ ना लाइक दोनों गए थे, लाइक मेरी मम्मी उन्होंने भेजा था उस टिकट में गए थे, और जो पापा थे वो अपना पूरा टिकट रहना खाना सब कुछ वो अपना
अलग से
खर्च।
गए थे। ओके, और स्कूल की तरफ से आपके साथ कौन गया था?
स्कूल की तरफ से राकेश राजपूत सर गए थे।
तो वहां जाने के बाद जब आप मुंबई में लैंड किए, फिर क्या हुआ वहां का प्रोसेस आगे?
मतलब ऐसे मुंबई में लैंड किए, उनका फोन आ गया था कि सर आपकी फ्लाइट लैंड हो गई है क्या, गाड़ी हमने भिजवा दी है, आप आ जाइए होटल। तो वहां से होटल गए थे, फिर होटल में पूरा एंट्री हुआ, वहां पे लाइक सब थे पेडिक्रेट वाले सारे मेंबर्स थे वहां पे, तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए फिर हम सेट में जाएंगे, एंड लाइक उन्होंने खाने आने का टाइम एंड सब बता दिया ना कि आप अभी रेस्ट कर लीजिए फिर शाम को हम सेट में जाएंगे, और मतलब वहाँ पे उन्होंने पूरा फॉर्म वॉर्म दिया फिल करने का, एंड देन फिर हम लोग बस हो गया खत्म रूम में।
फिर सेट पे गए
नहीं,
फिर।
उसी दिन ना दिखाने लगे
अच्छा,
गए थे और फिर दूसरे दिन शूटिंग के लिए।
तो जिस दिन आप लैंड किए उसी दिन 5 बजे आप लोग को सेट पे जाना था सेट देखने।
हाँ
तो पहली बार आप गई थी सेट देखने ऐसे जहां पे शूट वगैरह होने वाली थी और चीजें मतलब टेलीविजन पे टेलीकास्ट होने वाली थी, तो वहां जाके कैसा महसूस किया और वहां पे कोई दोस्त बने आपके उस वक्त?
वहाँ जाने से लाइक एकदम एक्साइटमेंट हुआ कि पहली बार शूटिंग देखेंगे और टीवी में कैसे शूट होता है वो देखेंगे सब कुछ, क्योंकि जनरली टीवी में खाली हम एडिटेड पिक्चर्स जो देखते हैं, कभी शूटिंग वूटिंग तो दिखता नहीं है, तो वही एक था कि शूटिंग देख पाएंगे, और बहुत एक्साइटमेंट थी कि वहाँ तक पहुँच गए, और एक बहुत अच्छा फीलिंग था कि सेलेक्टेड हुए वहाँ तक पहुँचे।
थोड़ी नर्वसनेस और डर भी था,
हाँ
फिर वहां जाके किसी से दोस्ती हुई आपकी?
हाँ एक जो रायपुर से जो लड़की गई थी छत्तीसगढ़ रायपुर, तो उससे मेरी लाइक थोड़ी सी बातचीत हुई, फ्रेंडशिप काइंड ऑफ हुई।
अच्छा, तो छत्तीसगढ़ से आप लोग 2 ही लोग गए हुए थे वहां?
हाँ छत्तीसगढ़ से दो।
एक रायपुर से और एक आप बिलासपुर से। फिर नेक्स्ट डे जब आप लोग शूट के लिए गए, फिर वहां पे क्या हुआ?
मतलब हम वहाँ पे शूट के लिए गए, पहले तो सुबह सुबह गए थे एकदम 7 o'clock करीब, तो वहाँ पे पहले आपका ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसके बाद मतलब वो ना हम लोग सीधा सेट पे चल गए थे, लाइक एंट्री वेंट्री हुई पूरी, तो प्रॉपर एंट्री एंड लाइक जो हमारे एंकर थे जक्सीज तो उनके साथ भी पूरी बातें हुई और बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत फन किया हमने स्टेज के ऊपर सेट के ऊपर।
तो सेट पे जाने के बाद आप लोग वहां पे जब पहुंचे तो आप लोग को टॉपिक मिला होगा कि
हाँ
इस टॉपिक पे आप लोग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है,
हाँ
तो वो टॉपिक क्या था और फिर उससे आपकी इमेजिनेशन कैसे काम की और आपने कैसे अपने मॉडल को फिर क्रिएट किया उसके बारे में भी बताइए।
वहाँ पे जैसे पहुँचने बाद जब हम सेट पे गए तो वहाँ पे हमको टॉपिक दिया गया, और लाइक 10 to 20 minutes हाफ एन आवर था कि आप सोच लो आपको क्या बनाना है, टीचर्स से बात कर लो फैमिली मेंबर्स से। तो वही मैंने लाइक स्कूल के कुछ टीचर्स लाइक रीचा दुआ मैम, नवनीता मैम, राजपूत सर और मेरा भाई था, तो सब पे लाइक फ़ोन पे बात हुई कि ये टॉपिक है इस पे मॉडल कैसे बना सकती हूँ, तो सब ने कुछ 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 आइडिया दिया थोड़ा 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 थोड़ा,
तो
तो उसको कंबाइन करके मॉडल लाइक डिसाइड हो गया था कि बनाना क्या है।
अच्छा, तो मतलब एक भाई और टीचर्स ऐसा गाइड आपको सपोर्ट करते रहते थे, फिर
हाँ
बाकी जो इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन को कैसे उस मॉडल में उतारना है वो पूरा काम आप करती थी।
हाँ
तो आपने अपने मॉडल के बारे में क्या सोचा था कि इस बार आप क्या बनाने वाली हैं?
सबसे बात करने के बाद टीचर्स, भाई, फैमिली मेंबर्स, उसके बाद लाइक एक हमारा टॉपिक जैसे था मरीन लाइफ, मतलब मरीन लाइफ थीम था, हमारा टॉपिक था कि तीन कॉज जिससे मरीन इकोसिस्टम हार्म होता है उसको बचाने के लिए तीन प्रिवेंशन। तो सबने थोड़े थोड़े कॉजेज और प्रिवेंशन बताए थे, तो उसको लाइक मैंने सोचा एक अबव सरफेस बनाएंगे, ओशन अबव सरफेस और ओशन अंडरग्राउंड सरफेस विद द बेस एल बेस।
तो एक ही मॉड्यूल में आपने फिर दोनों चीजें दिखाई कि अबव सरफेस और अंडर द ओशन भी।
हाँ मतलब लाइक एल शेप बनाया था और उसमें जो एल का जो स्टैंडिंग वाला साइड रहता है उसमें एक अलग से एक छोटा सा बेस लगा दिया था, तो उसमें वो लाइक अबव सरफेस हो गया और नीचे अंडरग्राउंड। तो उसमें फिर लाइक टॉपिक के हिसाब से मैंने तीन वो दिखाए थे, कॉजेज और तीन प्रिवेंशन। तो पहला कॉज था मेरा वो कोरल रिस्टोरेशन, सेकेंड प्लास्टिक, थर्ड ऑयल स्पिल। लाइक जो कोरल रिस्टोरेशन होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें क्या होता है घर से गंदा पानी और सब कुछ आता है, डस्ट वस्ट पूरा फैक्ट्री से, केमिकल सब कुछ, तो वो सब सीधा ओशन में डंप कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उसको बिना प्यूरीफाई किए बस सीधा ओशन में डंप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है जो कोरल्स रहते हैं
जी
उनके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, लाइक जहाँ से वो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, लाइक जहाँ से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, इन्हेल एक्सलेशन का उनका वो ब्लॉक बंद हो जाता है और उससे कोरल्स बहुत डैमेज होते थे, कोरल्स मरते जा रहे थे धीरे धीरे, ओशन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उस वजह से मछलियाँ और लाइक जो भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सब धीरे धीरे डेड होते जा रहे थे। तो
बिल्कुल।
उसको बचाने के लिए लाइक एक मरीन होता था डाइवर जो ओशन में जाके कोरल्स प्लांट करेगा जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो फैक्ट्री से केमिकल निकल आते थे उनको प्यूरिफाई करके डाले। तो वही लाइक मरीन है, वो मैंने हैंग कर दिया था कि वो नीचे जाके आपका सब कोरल्स लगाए और ऊपर में फैक्ट्रीज
तो ये
अंडरग्राउंड।
आपने एक प्रॉब्लम दिखाई थी कोरल रीफ वाली, और उसका फिर आपने सॉल्यूशन दिखाया एज अ मरीन, जो आपने बताया ड्राइव जो जाकर उसको प्लांट करेगा।
हाँ
अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट हमारा था प्लास्टिक जो था पैसिफिक ओशन में, लाइक लोग बीचेस में जाते हैं घूमने करने के लिए, वहाँ पे खाते हैं पीते हैं फिर चीज़ें फेंक देते हैं, लाइक डस्टबिन का यूज़ नहीं करते, डस्टबिन वहाँ पे रहता है।
अच्छा, कभी आप बीच पे गई हैं तो
हाँ
आपने एक्सपीरियंस किया है, वहां देखी आपने ये प्रॉब्लम?
हाँ मतलब ना सब लोग वैसे कचड़ा कचड़ा फेंक देते हैं पूरा, लाइक डस्टबिन खाली रहता है वहाँ पे, कोई लाइक उठ के डस्टबिन में नहीं डालता, जहाँ बैठे हैं वहीं से सीधा उसको थ्रो कर देते हैं,
फेंक
फेंक
देते हैं,
देते
उन्हें
हैं,
लगता है खाली मैदान है, फेंक दो
फेंक दो।
कचरा कहीं भी।
फिर वो पूरा ओशन में धीरे धीरे जैसे ओशन की लहरें आती है वो अपने साथ ले जाती है सारा कचरा।
तो जब आप हम वापस प्रोजेक्ट पे आएंगे, मॉडल पे आएंगे, पर इसके पहले हम आपके बीच का सफर जानना चाहेंगे कि जब आप बीच में खड़े होकर लोगों को ये करते देख रही थी तो आपको क्या लग रहा था? मन कर रहा था कि इनको जाके मैं रोक लूं?
बस देख के यही लग रहा था कि क्या कहते हैं कि आप थोड़ा कुछ कर सकूं मैं, लाइक कई लोगों को तो हमने बोला भी था जो आसपास वाले की कचरा ऐसे मत फेंको डस्टबिन में फेंको, और लाइक बोले पूरा ओशन हार्म कर रहे थे, तो देख के एक थोड़ा सा ना सैडनेस वाली फीलिंग आई ओशन के लिए, लाइक मरीन इकोसिस्टम के लिए, कि आप खुद अपने घर में रहते हो तो आप इतनी साफ सफाई करके रहते हो, पूरा एक एक कचरा झाड़ू पोछा सब कुछ एकदम करके नीट एंड क्लीन घर में रहते हो और आप उनका घर ऐसे गंदा कर रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा सैडनेस वाली फीलिंग आई थी।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें जो हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान करती हैं, और उसी वजह से ये जो हम मौसम में बदलाव देखते हैं एकदम, ये उन्हीं सब चीजों का परिणाम है कह सकते हैं, है ना?
हाँ
तो फिर जो सेकंड परेशानी आपने दिखाई अपने प्लास्टिक वाली, उसका आपने क्या सोल्यूशन दिखाया और उस परेशानी को अपने प्रोजेक्ट में कैसे दिखाया?
उसका लाइक मैंने बीचेस बीच बनाया, लाइक उसमें डस्टबिन बनाया जो डस्टबिन एकदम खाली है, और कचड़े बनाए समुद्र में पूरे कचड़े फैले हुए, और लाइक एक प्लास्टिक कलेक्टिंग मशीन या फिर हम उसको ओशन क्लीनिंग मशीन भी बोल सकते हैं, जो क्या कहते हैं वो बनाया था मैंने जो ओशन में फ्लोट करता है, ओशन
अच्छा,
सरफेस में फ्लोट करते करते एक लॉन्ग वायर उससे अटैच रहती है लाइक नेट काइंड ऑफ वायर, वो पूरा क्या कहते हैं कचड़ा को अपने तरफ खींचती है, और फिर उससे ना एक लेडर है तो उस लेडर में वो पूरा लेडर से वो मशीन के अंदर जाता है प्लास्टिक एंड सब, वो फिर वो उसको स्टोर कर लेता है। फिर स्टोर करने के बाद थोड़े टाइम बाद वो सारे प्लास्टिक को रिसाइकल कर देता है और लाइक ओशन से सारे प्लास्टिक हट जाते हैं।
अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है ये वो मशीन ओशन के अंदर ही करती है, प्लास्टिक ले ले
ओशन के अंदर नहीं, ओशन के ऊपर
ओशन
सरफेस
के
में।
ऊपर। ओके, तो ओशन के ऊपर से वो ओशन के अंदर के प्लास्टिक को कलेक्ट करती है और
हाँ
रिसाइकल करती है।
लाइक एक नेट काइंड ऑफ रहता है जो उससे पूरा ऐसे करके सामान खींच लेता है।
ठीक
लाइक
है,
हम मछली कई लोग पकड़ते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले तो नेट फेंकते पूरा मछली पकड़ते हैं, वैसे ही एक अटैच रहता है मशीन में जो अपने आप ऐसे करके सारा प्लास्टिक कलेक्ट करता है।
ठीक है, पर अगर जैसे नेट काइंड ऑफ चीज है तो उसमें ये भी तो संभावनाएं हैं कि मछली भी फंस सकती है,
नहीं पर वो क्या बहुत आपका बहुत बारीक रहता है।
मछली वाला।
हाँ मछली वाला आपका बहुत बारीक रहता है, बट ये आपका कह रहे थे थोड़े बड़े बड़े होल से ये मछली आएगी तो मछली निकल जाएगी,
अच्छा,
और वो लाइक एकदम बड़ा भी नहीं है ना, थोड़ा छोटा सा रहता है तो वो थोड़े दूर का ही कवर कर पाता है।
ठीक। तो मतलब जो नेट के होल्स हैं वो थोड़े बड़े रहेंगे
बढ़िया
ताकि मछली उसमें से निकल सके और सिर्फ प्लास्टिक। अरे वाह, इतनी अच्छी सोच। तो वही सोच रही थी कि फिर मछली भी तो फंस सकती है, लेकिन काफी अच्छे से आपने उस चीज को डिस्क्राइब किया। फिर तीसरी जो परेशानी है हमारी वो क्या थी?
तीसरी हमारी थी ऑयल स्पिल। तो जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको में शिप्स का बहुत आना जाना लगा रहता है, शिप बहुत ट्रेवल करती है गल्फ ऑफ मेक्सिको से, तो कभी कभी क्या होता है शिप से ऑयल लीक हो जाता है। तो वो लीक होता है तो ऑयल बहुत जल्दी आपका ओशन के सरफेस पे पूरा स्प्रेड हो जाता है बहुत पतली लेयर में। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका जो सनलाइट होती है वो सब ना ओशन के अंदर नहीं जाती, वो ऑयल रोक लेता है। तो उस वजह से आपके जो कोरल्स है वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते और सनलाइट भी नहीं मिलती है, तो उस वजह से फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता। और
तो इसकी वजह से जो ओशन का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफी ठंडा हो जाता है, जो कि मरीन लाइफ के लिए थोड़ी इम्पॉसिबिलिटीज डेवलप करता है उनके
हाँ
रहने के लिए
लाइक
वहां पे। ठीक
सनलाइट नहीं पहुंचती, लाइक हमें भी सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी सनलाइट के बिना नहीं रह सकते, तो लाइक उनको भी सनलाइट बहुत जरूरी होता है क्योंकि ओशन का टेम्परेचर भी फिर एकदम लो हो जाता है, -डिग्री चल देता है, तो उससे सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है
तो उसके लिए फिर आपने क्या सोल्यूशन दिखाया?
उसके लिए। लाइक ना आप क्या कर सकते हैं, पहले सारा ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं एक अलग से टैंक में, फिर उसको हम थोड़े टाइम बाद थोड़ी देर के लिए फ्रीज होने दे देंगे, फिर उसके बाद स्कीमिंग प्रोसेस होता है जो स्कीमिंग से आप पूरा उसको निकाल सकते हैं। लाइक स्कीमिंग से वो ऊपर फ्लोट हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा तो वो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो जो स्कीमिंग रहता है उसकी वजह से पूरा उसको ले लेते हैं, ऑयल को
अच्छा, करेक्ट कर लेते हैं उसको,
कलेक्ट कर लेते
तो उस वजह से वो जो ऊपर की लेयर है ऑयल की वो हट जाएगी
हैं।
और सनलाइट पास होना
पास होना चालू कर
इजी हो
देगी।
जाएगा। नहीं, ये जो तीन प्रॉब्लम्स है इसके बारे में आपने कैसे सोचा? एक के बारे में तो हमें पता चल गया कि प्लास्टिक के बारे में आपने बीच में ऑब्जर्व किया और फिर आपको ख्याल आया, बट बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपने कैसे सोचा?
बाकी लाइक जो थोड़ा टाइम मिला था सब कजन्स और फैमिली मेंबर्स टीचर्स सबसे बात करने का, तो उसमें उन्होंने भी बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लाइक कुछ कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो आपका कोरल्स के पास रहते हैं, मतलब ओशन एरिया के पास रहते हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया कि ये प्रॉब्लम्स होती है।
पहले आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा था या सुना था?
लाइक मैगजीन पढ़ी थी एक बहुत पहले कि ओशन का वो बचाव के लिए था वो मैगजीन, कि उसमें सारे स्टेप उसमें कई सारे ऐसे थे प्रॉब्लम्स और उसके प्रिवेंशन भी थे।
तो इस तरीके से वहां पे आपने प्रोजेक्ट बनाया और फिर उसको शो किया बहुत ही अच्छे तरीके से, पर वहां पे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना समय लगा?
वहां पे हमें 3 आवर्स यानी 3 घंटे मिले थे पूरा
अच्छा,
प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
तो 1 घंटे मतलब उसको सोचने के लिए और फिर 3 घंटे बनाने के लिए इतना
हाँ
समय मिला था। तो जब घर में आप प्रोजेक्ट बना रही होंगी तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प मम्मी से या भाई से मिल जाती होगी, जैसे
हाँ
कुछ कटिंग करना है या कुछ, पर वहां पे तो ये चीजें नहीं हुई होंगी तो सब कुछ खुद से करना
हाँ
पड़ा, तो वो हो गया कि लग रहा था कि अरे अब कैसे करूंगी?
मतलब कुछ कुछ चीजें बिगड़ी भी और कुछ अच्छी भी बन गई, बस जैसा बनते गए बनाते गए।
और आपकी जो साथ में दोस्त थे जिन्होंने सेकेंड थर्ड पोजीशन स्कोर की, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था?
लाइक टॉपिक ना सबका सेम ही था, तो लाइक जो आए उन्होंने भी कुछ ऐसी टॉपिक्स में उन्होंने भी यही सब, प्लास्टिक कुछ ने किया था कि लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है लाइक फिशेस को, और उन्होंने भी इस टाइप की लाइक ओशन की सब जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब कलेक्ट करके उन्होंने भी उसको मॉडल पे
उन्होंने भी
शो
अलग अलग
किया था।
प्रॉब्लम को शोकेस किया था। तो उसके बाद जब आप लोग का फाइनल रिजल्ट आया और जब आपको पता चला कि अब तो जो इतनी सारी मेहनत थी, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, फिर आप मुंबई आए, फिर मुंबई आके सेकेंड प्रोजेक्ट भी अब आपका सेलेक्ट हो गया है और आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं, तो उस समय फिर क्या रिस्पॉन्स था आपका और आपके पेरेंट्स का?
जब हम लोग स्टेज में खड़े थे, जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जब तो लाइक हार्ट बीट एकदम तेज हो गई थी कि कौन हो सकता है, कौन होगा, कि मॉडल सभी ने बहुत अच्छा बनाया था, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं, सबका बहुत अच्छा दिख रहा था मॉडल। तो वो एक बहुत थोड़ा डर वाली फीलिंग थी कि पता नहीं किसका आएगा। बट फिर जैसे ही अनाउंस हुआ कि फर्स्ट पोजीशन में मतलब मेरा नाम है, तो लाइक एक बार तो मैं पूरी ब्लैंक थी, कुछ सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, बस एकदम खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद धीरे से सुना मैंने कि मेरा नाम है। फिर उसके बाद लाइक जब ट्रॉफी वॉफी मिली और बहुत ही एक्साइटमेंट था, खुशी थी कि मेरा फर्स्ट आ गया।
तो जब ट्रॉफी आप ले रही थी हाथ में और उस वक्त सारी मेहनत आपको दिख रही होगी अपनी, कितने समय से आपने जब पहला प्रोजेक्ट भी बनाया था, फिर वहां भी जो 1 घंटे आपने सोचा और वो सारी चीजें जब बन के
बनाई
रेडी हुई और आप फिर फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि ऑल इंडिया में आप फर्स्ट हैं,
हाँ
जो कि एक काफी अच्छी और बड़ी बात है कि एक तो एक 7th क्लास की बच्ची वहां पे जा रही है और अपने टैलेंट को इतने अच्छे से शोकेस कर रही है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन वहां पे दिखा के आ रही है, तो ये एक काफी बढ़िया बात है। अब आगे आपने क्या सोचा है? आपको साइंस पसंद है या फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद था इसलिए आपने इस मॉडल में हिस्सा लिया? पर जितना मैं जान पा रही हूँ, जिस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी है, मुझे लगता है कि साइंस आपको पसंद है।
लाइक मेरे को साइंस पसंद है, बट आर्ट एंड क्राफ्ट भी मेरा लाइक एक बहुत पसंद है मुझे, कि मैं घर में भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी करते ही रहती हूँ क्राफ्ट। और साइंस तो ऐसा है कि पढ़ते जाओ, जितना पढ़ो उतना अच्छा है, तो मैं लाइक सब पढ़ते रहती हूँ। जब देखो तो साइंस की बुक्स में भी बहुत कुछ रहता है, तो
बिल्कुल
बुक्स रीड करना, मैगजीन्स पढ़ना, और जैसे आजकल प्लांट्स को भी बहुत लोग क्या कहते हैं, हार्म करते हैं, कट करते हैं अपने फायदे के लिए, लाइक प्लांट्स को कट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। पेपर भी आजकल बहुत बन रहा है कि लोग पेपर बना यूज करते हैं पर फेंक देते हैं, क्योंकि पेपर जो है वुड से ही बनता है। तो वो सब भी मैंने देखा, पढ़ा है कि लोग बहुत अपने लिए सेल्फिश काइंड ऑफ है, कि पेड़ों को भी काट दे रहे अपने लिए, बट वो ये नहीं सोचते कि पेड़ ही वो है जिनकी वजह से वो सांस
सांस
ले
ले पा
पा
रहे
रहे हैं,
हैं।
जी पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा।
बिल्कुल
वो ये नहीं सोचते, बस सोचते कि पेड़ काट के हम बिल्डिंग बना देंगे, आलीशान बिल्डिंग में रहेंगे, उस टाइप के लोगों की थिंकिंग। लाइक पहले जमाने में सब जगह सिर्फ हरियाली थी, पेड़ 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 पेड़, पर अभी देखोगे सब जगह खाली आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, पेड़ पौधे बहुत कम जगह, चाहे फॉरेस्ट है भूल गया, धीरे धीरे अब तो फॉरेस्ट भी लाइक लोग कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को भी रहने नहीं दे रहे, धीरे धीरे कट कर रहे हैं। तो वही हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, लाइक अपने घर में करो, अपने आसपास के एरियाज में आप प्लांट उगाओ, स्कूल्स में करो। लाइक हमारे स्कूल में भी हर साल इन्वायरमेंटल डे में कई सारे प्लांट्स लगते हैं, और खाली इन्वायरमेंटल डे में नहीं, ऐसे भी हम लोग बहुत प्लांट लगाते हैं। लाइक कई बच्चे क्या है, हम लोग एक्चुअली लाइक बर्थडे में भी, किसी का बर्थडे होता है तो एक प्लांट ले जाते हैं, प्लांट ग्रो कर देते हैं स्कूल में, घर में ग्रो कर देते हैं, लाइक पहले बर्थडे में एक प्लांट, सेकेंड में एक प्लांट, उस टाइप से प्लांट भी ग्रो कर देते हैं।
बिल्कुल, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसपे शायद तक बड़ों का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बड़े आजकल, ऐसा मैं मानती हूँ कि हम लोग लोभी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, और अपने लालच में और सुख सुविधाएं जुटाने के लिए हम अपने पर्यावरण को नुकसान करते जा रहे हैं।
हाँ वही, लाइक हम आराम से रहे, ऐशो आराम से रहे, तो अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटते जा रहे, पर वो नहीं सोच रहे कि सबसे बड़ी जरूरत पेड़ ही है।
बिल्कुल, कुछ समय के आराम के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म एक परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं। काफी अच्छी बात कही है आपने, और समझ पा रहे हैं हम कि एक साइंस में रुचि रखने वाली बच्ची जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट को भी बहुत पसंद करती है, और ये दोनों चीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था आपका मॉडल। हर्षिता, तो इतनी मेहनत करके आपने फर्स्ट पोजिशन स्कोर की एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे आप बिलासपुर को और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां पे आपको इनाम क्या क्या मिले?
लाइक एक बड़ा सा शील्ड, ऑब्वियसली वो तो रहना ही, सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, 1 लाख ट्राई, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स थे जैसे फेविक्रिएट के प्रोडक्ट थे, लाइक ग्लू, फेविस्टिक, MR, कलर्स और बहुत कुछ. और एक गिफ्ट हैम्पर मिला था जिसमें लाइक कस्टमाइज बैग, कस्टमाइज बॉटल, कस्टमाइज मग और फ्रिज मैग्नेट, बुक मार्क, कैलेंडर
अच्छा,
और भी बहुत पेन ड्राइव और बहुत कुछ मिला था.
मतलब काफी बड़ा गिफ्ट हैम्पर था आपका।
हाँ
अच्छा, तो ये बताइए कि आप शील्ड को देख के ज्यादा खुश हुई या वो हैम्पर देख के ज्यादा खुश हुई?
शील्ड.
शील्ड को देख के ज्यादा खुशी हुई। अगर मैं होती तो मैं तो हैम्पर देख के ज्यादा खुश हो जाती।
नहीं, मुझे शील्ड ज्यादा प्यारा है.
बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं अपने लाइफ में? आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं?
लाइक बड़े होके तो मेरे को ऐसा है कि डॉक्टर बनना है मेनली, साइंस लेके.
अच्छा, उम्मीद करती हूँ मैं आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाएंगी। और अगर अगले साल ये कंपटीशन होता है तो क्या आप उसमें फिर पार्ट लेंगी?
लाइक ट्राई करेंगे पार्ट लेने का, अगर सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है.
बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपके आगे के जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। सारी चीजों पे आप सफल हो और जरूर से आप डॉक्टर बने और बहुत अच्छी डॉक्टर बने, ताकि इतनी अच्छी सोच रखने वाले बच्चे सफल होंगे तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। तो श्रोता साथियों, आप सुन रहे थे सेंट जेवियर स्कूल की हर्षिता नोपानी को। तो ये था आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।